प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम कक्षा ट्वेल्थ राजनीति विज्ञान में तीसरी इकाई का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, जिसमें हमने सांप्रदायिक समस्या के कारणों तक अध्ययन कर लिया है। आज हम सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम और सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझावों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुने और याद करें। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता के कारण न सिर्फ राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा पैदा हुआ है, बल्कि विकास की प्रक्रिया भी अवरुद्ध हुई है। सांप्रदायिकता के कारण देश के टुकड़े हुए, जो आज भी अखंडता के लिए खतरा बनी हुई हैं। सांप्रदायिक समस्या के कारण देश को कई दुष्परिणाम भोगने पड़े, जिसमें निम्न परिणाम हैं। पहला दुष्परिणाम आपसी द्वेष। सांप्रदायिकता का पहला दुष्परिणाम है आपसी द्वेष। सांप्रदायिकता के कारण समाज में फूट पड़ गई, आपसी द्वेष एवं अविश्वास पैदा हुआ। समाज में आपसी समरसता का वातावरण नहीं रहा, जिसके कारण छोटी सी घटना भयंकर सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। समाज में शांति व्यवस्था एवं भाईचारे की भावना खत्म हो जाती है एवं विविधता में एकता का भाव खत्म हो जाता है। तो सांप्रदायिकता का पहला दुष्परिणाम हुआ आपसी द्वेष। दूसरा दुष्परिणाम आर्थिक हानि। सांप्रदायिकता दंगे भड़कने पर भयंकर विनाश होता है। सांप्रदायिक दंगे भड़कने पर भयंकर विनाश होता है। गाड़ियां बाजार जला दिए जाते हैं एवं राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। दंगों के कारण, कर्फ्यू वगैरह के कारण कई दिनों तक बाजार बंद रहते हैं, जिसके कारण आर्थिक नुकसान के साथ दैनिक मजदूरी पर गुजारा करने वाले लोगों के सामने भूखमरी की नौबत आ जाती है। अंत की बुरहान की मौत के बाद कश्मीर के बाजार महीनों तक बंद रहे। जम्मू कश्मीर की आर्थिक हालात का एक प्रमुख कारण सांप्रदायिक समस्या भी है। आर्थिक विकास शांति एवं व्यवस्था में ही हो सकता है, अशांति एवं अव्यवस्था में नहीं। तो आर्थिक विकास भी देश के अंदर शांति व्यवस्था होगी, तभी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार सांप्रदायिकता का दूसरा परिणाम हुआ आर्थिक हानि। सांप्रदायिकता का तीसरा दुष्परिणाम प्राण हानि। सांप्रदायिक दंगों में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं तथा हजारों घर उजाड़ दिए जाते हैं। रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, बम्बई आदि के दंगे इसका उदाहरण हैं, जिनमें मरने वालों के अलावा हजारों अपंग व अपाहिज हो गए। इस प्रकार सांप्रदायिकता के कारण प्राण हानि भी बहुत अधिक मात्रा में हुई है और होती है। सांप्रदायिकता का चौथा दुष्परिणाम राजनीतिक अस्थिरता। सांप्रदायिक समस्या के कारण राजनीतिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिससे सरकारों की स्थिरता प्रभावित होती है। अस्थायी सरकार स्थायी विकास के कार्य नहीं कर पाती। वह सदा अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु प्रयत्नशील होती हैं, जिससे विकास कार्यों में पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाती। फलस्वरूप देश के विकास की गति अवरुद्ध होती है। सांप्रदायिकता का पांचवा दुष्परिणाम राष्ट्रीय एकता में बाधा। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारे की भावना को नष्ट करती है। समाज में फूट पैदा कर सामाजिक समरसता को खत्म करती है। देश के नागरिकों में जितनी एकता की भावना होगी, राष्ट्र उतना ही शक्तिशाली होगा। फूट राष्ट्र एवं समाज को कमजोर बनाता है। इस प्रकार सांप्रदायिकता से राष्ट्रीय एकता में बाधा भी उत्पन्न होती है। छठा दुष्परिणाम, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। भारत एक बहुसंप्रदायी देश है जिसमें अनेक संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। देश में शांति एवं व्यवस्था के साथ विकास के लिए सबको मिलजुल कर रहना होगा, लेकिन उग्र सांप्रदायिक भावनाएं एकता को पनपने ही नहीं देती। इस प्रकार छठा परिणाम हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। सांप्रदायिकता का सातवां दुष्परिणाम, औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा। देश का औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास शांति एवं सुव्यवस्था में ही हो सकता है। अशांति एवं हिंसा के वातावरण में कोई पूंजीपति अपना धन नहीं लगाएगा। इस प्रकार सांप्रदायिक अशांति देश का औद्योगिक एवं व्यापारिक अवरुद्ध कर देती है। विकास शांति एवं सुव्यवस्था में ही हो सकता है। पंजाब में पैदा इसी प्रकार की अशांति ने पंजाब को आर्थिक विकास के पथ पर कई वर्ष पीछे कर दिया था। इस प्रकार सांप्रदायिकता के सात दुष्परिणामों के बारे में हमने अध्ययन किया है, जिसमें पहला दुष्परिणाम आपसी द्वेष, दूसरा हमने पढ़ा आर्थिक हानि, तीसरा दुष्परिणाम प्राण हानि, चौथा दुष्परिणाम राजनीतिक अस्थिरता, पांचवा दुष्परिणाम राष्ट्रीय एकता में बाधा, सांप्रदायिकता का छठा दुष्परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, और सातवां व अंतिम दुष्परिणाम औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास में बाधा। सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव। सांप्रदायिकता देश के लिए ही नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए एक गंभीर अभिशाप है। देश को इससे बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। देश की एकता एवं अखंडता पर खतरा है। प्रगति एवं विकास में बाधक है। इसलिए सांप्रदायिकता को दूर किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला सुझाव, सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। समानता के संबंध में आदर्शों की बातें करने की बजाय उसे व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार सांप्रदायिकता को दूर करने का पहला सुझाव हुआ, सभी संप्रदायों में आपसी समानता बनी रहनी चाहिए। दूसरा दूर करने का सुझाव, शिक्षा में शाश्वत नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, लेकिन शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा तो सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। धर्म विशेष की शिक्षा की जगह देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। सांप्रदायिकता को दूर करने का तीसरा सुझाव, धर्म के आधार पर किसी धार्मिक वर्ग के लिए कोई विशेष रियायतें या सुविधाएं न दी जाएं, जिससे अन्य धर्मों के लोगों में ईर्ष्या की भावना पैदा हो। धर्म एवं जाति के आधार पर इस तरह का भेदभाव आपसी तनाव पैदा करता है, जिससे बंधुत्व की भावना खत्म होती है। सांप्रदायिकता को दूर करने का चौथा सुझाव, तुष्टिकरण की नीति का परित्याग। तुष्टिकरण की नीति का परित्याग कर सरकार को सबके लिए समान आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए। कानून एवं नियम देश एवं समाज की आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार बनते हैं। जब देश की आवश्यकता एवं परिस्थिति एक समान है तो कानून भी सबके लिए समान होने चाहिए। अलग अलग वर्गों एवं संप्रदायों के लिए अलग अलग कानून देश में अलगाव की भावना पैदा करते हैं। जाति, धर्म, भाषा एवं संप्रदाय के आधार पर कानूनी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिकता को दूर करने का पांचवा सुझाव, अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो। अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, सरकार ऐसी व्यवस्था करें लेकिन उनका वोट बैंक बनाने हेतु विशेषाधिकार देना अन्य वर्गों में असंतोष को जन्म देता है, जिससे सरकार एवं राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। सांप्रदायिकता को दूर करने का छठा सुझाव, सांप्रदायिकता का एक सबसे बड़ा कारण चुनावी राजनीति है। राजनीतिक दल चुनाव में फायदा उठाने हेतु सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। इस पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। किसी भी दल को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव प्रचार में धर्म का सहारा लेने से रोकने हेतु दृढ़ व सुनिश्चित नियमों का निर्माण व क्रियान्वयन अति आवश्यक है। सातवां सुझाव, समय समय पर सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांगों को दृढ़ता से ठुकराना होगा। नागरिकों में एक राष्ट्र की भावना पैदा करनी होगी। आठवां सुझाव, सरकार को अपनी भाषा नीति ठीक करनी चाहिए। हिंदी संपूर्ण देश की संपर्क भाषा न बन सके, इसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। हिंदी संपूर्ण देश की संपर्क भाषा बन सके, इसके लिए राजनीति से ऊपर उठकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। तो संपूर्ण देश की संपर्क भाषा हिंदी को बनाना चाहिए, जिससे सांप्रदायिकता को दूर किया जा सके। सांप्रदायिकता को दूर करने का नवा सुझाव, शिक्षा से दृष्टिकोण उधार बनता है तथा व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। अशिक्षित व्यक्ति धर्म का संकीर्ण एवं अपने स्वार्थ में प्रयोग करने वालों के बहकावे में अधिक आ जाते हैं। सांप्रदायिकता का दूर करने का दसवां सुझाव, सर्वधर्म संभाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। सर्वधर्म संभाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। साहित्य एवं मीडिया द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे लोगों को एक दूसरे के धर्म की जानकारी मिले, धार्मिक सहिष्णुता पैदा हो। सांप्रदायिकता को दूर करने का 11वां सुझाव, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन नहीं होना चाहिए तथा धार्मिक संगठनों को राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध हो। सांप्रदायिक संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। सचर कमेटी प्रतिवेदन 2006, सचर कमेटी प्रतिवेदन 2006 में क्या बताया गया कि भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने व उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सचर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने व उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु सचर कमेटी बनाई गई थी, जो 7 सदस्यीय कमेटी थी। सचर कमेटी ने मुसलमानों की स्थिति का अध्ययन कर कुछ सुझाव दिए थे, जिसके तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के लिए 15 सूची कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, मुस्लिम बालिकाओं के लिए सुविधाएं आदि। कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की। तत्कालीन केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग कोटे में से 4.5% आरक्षण अल्पसंख्यकों को देने का निर्णय किया, जिसे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को अस्वीकार किया गया। इस प्रकार सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए भी सचर कमेटी प्रतिवेदन 2006 का भी गठन किया गया था। तो सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव, जो हमने पहला सुझाव पढ़ा था, लोगों में समानता की भावना का विकास होना चाहिए। दूसरा हमने सुझाव पढ़ा, शिक्षा में शाश्वत व नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। तीसरा सुझाव, धर्म के आधार पर किसी भी धार्मिक वर्ग के लिए कोई विशेष रियायतें या सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। चौथा सुझाव, तुष्टिकरण की नीति का परित्याग करना चाहिए। पांचवा सुझाव हमने पढ़ा, अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने वाला कार्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। नवा सुझाव हमने पढ़ा, जो चुनावी राजनीति सांप्रदायिकता के आधार पर होती हैं, उस पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। और सातवां सुझाव हमने पढ़ा, एक राष्ट्र की भावना का विकास लोगों में किया जाना चाहिए। और आठवां सुझाव, संपूर्ण देश की राजभाषा, संपूर्ण देश की संपर्क भाषा हिंदी होनी चाहिए। और नवा सुझाव हमने पढ़ा, अशिक्षित व्यक्ति धर्म का संकीर्ण एवं अपने स्वार्थ में प्रयोग करने वालों के बहकावे में नहीं आने चाहिए, यानी शिक्षा का दृष्टिकोण उधार होना चाहिए, जिससे सांप्रदायिक समस्या को दूर किया जा सकता है। और दसवां सुझाव, सांप्रदायिकता को दूर करने का सर्वधर्म संभाव को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। और ग्यारहवां व अंतिम सुझाव हमने पढ़ा, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन नहीं होना चाहिए। तो इस टॉपिक के अंदर जो मुख्य प्रश्न बन रहे हैं, वह प्रश्न लिखें। पहला प्रश्न लिखें, सांप्रदायिकता के 4 दुष्परिणाम लिखिए। सांप्रदायिकता के 4 दुष्परिणाम लिखिए। जो हमने 7 दुष्परिणामों के बारे में अध्ययन किया है, उसमें से 4 दुष्परिणाम लिखकर के याद करें। दूसरा प्रश्न लिखें, सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कौन कौन से 4 सुझाव दिए जा सकते हैं, वो 4 सुझाव लिखिए। सांप्रदायिकता को दूर करने वाले 4 सुझाव लिखिए। सांप्रदायिकता को दूर करने वाले 4 सुझाव, इसका आंसर लिखें। सांप्रदायिकता को दूर करने का पहला सुझाव, शिक्षा में शाश्वत नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा में शाश्वत नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव लिखें, तुष्टिकरण की नीति का परित्याग किया जाना चाहिए। तुष्टिकरण की नीति का परित्याग किया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव लिखें, देश के सभी नागरिकों में एक राष्ट्र की भावना का विकास करना चाहिए। देश के सभी नागरिकों में एक राष्ट्र की भावना का विकास करना चाहिए। चौथा सुझाव लिखें, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो आज का तीसरी इकाई का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। अगली क्लास में हम इसी तीसरी इकाई का दूसरे अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। थैंक यू।